आमुख। भक्ति काव्य को हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहने का सीधा तात्पर्य होता है कि यहाँ काव्य की रचनात्मक क्षमता अपने श्रेष्ठतम रूप में है। पर इस काव्य का एक अन्य स्तर जो वैशिष्ट है, उसकी ओर ध्यान प्रायः नहीं जाता। भक्ति काव्य हिंदी समाज की उदारतम चेतना का दस्तावेज है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा इस युग के श्रेष्ठ कवि हैं। यह मान्यता सर्वस्वीकृत है। इसका निहितार्थ है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, पुरुष, स्त्री, समाज के सभी वर्गों का यह साझा रचना कर्म है। भले वे वर्ग सामान्य तौर पर समाज में अपना अलगाव बनाए रखते हों, यूँ हिंदी जीवन की व्यापक समरसता का अन्यतम प्रमाण है हिंदी भक्ति काव्य। तब आधुनिक युग में नए नए प्रचलित दलित साहित्य या कि स्त्री साहित्य जैसे पद हिंदी की अपनी परंपरा से बेमेल बैठते हैं। भक्ति काव्य वस्तुतः हिंदी समाज की अनेक रूढ़ियों के बावजूद उसकी प्रबल जीवनी शक्ति का गतिशील और उज्ज्वल साक्ष्य है। फिर यह भी संयोग से कुछ अधिक है कि ये पांचों कवि मिलकर समूचे हिंदी प्रदेश के विविध जनपदों अथवा बोली क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व में भोजपुरी से लेकर अवधी, ब्रज होते हुए पश्चिम में राजस्थानी तक सृजनात्मक क्षेत्र में समग्रता समरसता की अब भारतीय परंपरा पहले से चली आती है। स्त्रियां वैदिक सूक्तों की रचयिता हैं। आदि कवियों में एक बर्बर जनजातियों में पोषित है, दूसरे दासी पुत्र, तुलसी के प्रयोग में वाजपेयी तो कोई नहीं। यह महज संयोग नहीं, यह प्रतिभा के सर्वत्र स्वाधीनता का उद्घोष है, जो किसी क्षेत्र, वर्ण, संप्रदाय, लिंग के अधीन नहीं। तब यह बात समझ में आती है कि समूचे भारतीय परिदृश्य पर और हिंदी क्षेत्र में विशेषतः संत कहे जाने वाले कवि अधिकतर तथाकथित निम्न जातियों से उठकर ऊपर आए थे। उनकी प्रतिभा को किसी प्रकार के आरक्षण की अपेक्षा नहीं थी। हिंदी समाज की उदारता भी यहाँ ध्यातव्य है कि उसने रचनाकार के प्रसंग में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता। राम तथा कृष्ण कथा हमारे देश में कथा युगों से चली आने पर भी हर युग का रचनाकार अपना संदर्भ उसमें तलाश लेता है। यह उनकी अक्षय अर्थ क्षमता का प्रमाण है। महाभारत से कृष्ण चरित्र और अंधा युग या कि मृत्युंजय और आगे तक रचना यात्रा ऐसे ही चलती है। यह प्रक्रिया आलोचक के लिए भी प्रेरणाप्रद है। रामायण, रामचरितमानस, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार अपने अपने राम की सर्जना करते हैं, तो आलोचक भी रामायण, रामचरितमानस या कि शक्ति पूजा का अपने ढंग से पुनर्सृजन करते हैं। अन्यथा रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी के बाद भक्ति काव्य के विवेचन का किसी के भी द्वारा क्या औचित्य होता? प्रस्तुत विवेचन से यह औचित्य प्रमाणित कहाँ तक होता है, यह विचार कर पाना स्पष्ट ही मेरे लिए संभव नहीं। इतिहास समय के एक अनुक्रम में पीछे से आगे बढ़ता है, पर देखना बहुत बार इसके उल्टे क्रम में होता है, क्योंकि वैसे ही सहज परिप्रेक्ष्य बनता है। आधुनिक कविता यात्रा के बाद इस भक्ति काव्य यात्रा में दृष्टिबिंदु यों आधुनिक होगा, परिदृश्य अतीत का। तभी वह अतीत हमारे वर्तमान से ठीक ठाक जुड़ेगा। रचना क्रम में आधुनिक काल आता है भक्ति काल के बाद। आलोचना क्रम में यह क्रम उलट जाता जाए तो इसका अपना औचित्य है। इस प्रसंग में कहना होगा कि लगभग 3 दशक पूर्व मध्यकालीन काव्य भाषा का अध्ययन प्रस्तुत किया था। तब दृष्टि कविता बनने की प्रक्रिया पर अधिक थी, अब कविता पर ही है, अर्थात सीधे पक्षी पर, न गुरु पर, न पास खड़े सहपाठियों पर और न वृक्ष पर ही। आधुनिक संरक्षण प्रधान दृष्टि से ध्यान अब पक्षी के लक्ष्य भेद पर नहीं, उसे मन में उतार लेने पर है कि अन्य भी उसे देख सके। यूँ कुल मिलाकर देखना दिखाना ही यह मुख्य उद्देश्य है। 70 पार कर लेने पर रुचि इधर हो जाए तो यह भी समझ में आने वाली बात है। देखना दिखाना फिर एक स्तर पर दृश्य के अर्थ संवर्धन में परिणित होता है और आप कहते हैं कि आलोचना की है। आधुनिक युग में निराला से लेकर बच्चन, दिनकर, अज्ञेय, शमशेर, लक्ष्मीकांत वर्मा तक विद्रोह, जवानी, सौंदर्य और अनर्थक के कवि अपने उत्तर काव्य में भक्ति की ओर उन्मुख हैं। ये भक्त कवि नहीं पर भक्ति काव्य इन्होंने लिखा है। हिंदी भक्ति काव्य परंपरा को समझने के लिए इस समूचे प्रवाह को एक बार के देखना उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से अध्ययन का अंतिम अध्याय आधुनिक भक्ति काव्य पर केंद्रित किया गया है। प्रक्रिया के दृष्टि से संस्कृत में धर्म का सत उतरता है। भक्ति काव्य धर्म को संस्कृति से जोड़ने वाली ऐसी ही प्रक्रिया है साहित्य के स्तर पर। एक ओर आलोचक से अपेक्षित है कि वह धर्म, भक्ति, संस्कृति की इस अंतर क्रिया को स्पष्ट करे, तो दूसरी ओर विचारधारा में बंद किए गए नए और विशिष्ट पुराने रचनाकारों को मुक्त कराना उसका एक मुख्य दायित्व है। कहना न होगा इस दोहरे दायित्व निर्वाह की ओर भी आलोचक का प्रस्तुत विवेचन में ध्यान रहा है। लेखक की पिछली कृति हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के कुछ अंश यहाँ आ गए हैं। मिलते जुलते संदर्भों में इतनी आत्म तस्करी अपरिहार्य हो जाती है। बड़े लेखकों को अपने उपयोग के लिए हस्तगत करने का एक माध्यम क्षेपक रहे हैं जो मध्यकालीन काव्य के पसारे में अनिवार्यतः मिलते हैं। क्षेपक स्पष्ट ही इस रचनाकार के व्यापक समाज में बहुग्राह्यता में से उपजते हैं। वे अनेक छोटे मझोले कवि जो किसी बड़े कवि की अनुकृति में रचना करके उसकी छाप से अपनी इन रचनाओं को चला देते हैं, बड़ा त्याग करते हैं, स्वेच्छा से अपनी रचना अपने प्रिय कवि के वांग्मय में विलीन कर देते हैं। उनकी ये रचनाएं साहित्यिक स्तर पर विलोम जार संतान कही जा सकती हैं। सामान्यतः तो रचनाकार अपने श्रोता, पाठक, भावक के मन में अपनी रचना के माध्यम से कुछ भावनाएं, कुछ विचार संक्रमित करके उन्हें वर्धित करता है। यहाँ क्षेपकाकार उल्टे अपने से बड़े लेखक के वांग्मय में अपनी भावनाएं और विचार उपजाता है। इसीलिए क्षेपक को कहा गया विलोम जार संतान। सभी बड़े भक्त कवियों के पाठ में इन क्षेपकों की समस्या आती है। यह संतोष का विषय है कि मध्यकालीन कवियों में से अनेक के वैज्ञानिक रीति से संपादित पाठ अब सुलभ हैं। यह ठीक है कि इन पाठों को विशद प्रतिशत शुद्ध निर्भ्रांत नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः पाठों का शुद्धिकरण एक निरंतर विकसनशील प्रक्रिया है। भक्ति कवियों के अध्येता से अपेक्षित यही है कि वह अपने विवेचन में यथासंभव इन प्रामाणिक पाठों को आधार बनाए। तभी वह कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा की रचनाओं का मर्म ठीक ठाक ग्रहण कर सकेगा। ऐसा करने में एक ओर मूल रचनाकार के मंतव्य के प्रति न्याय हो सकेगा, दूसरी ओर पाठ संपादकों के श्रम और मनोयोग के प्रति। यदि पाठ ही अशुद्ध हुआ तो उसका विवेचन, अर्थ संवर्धन आप से आप दूषित हो जाएगा। प्रस्तुत अध्ययन में प्रामाणिक पाठों के चुनाव के प्रति पूरी सजगता रखी गई है। राष्ट्रीयता को हम हिंदी क्षेत्र में आधुनिक भावबोध की मुख्य पहचान मानते हैं, क्योंकि यह वृत्ति यत्नज और सचेतन है। इसीलिए भारतेंदु को आधुनिक चेतना का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति काव्य में स्पष्ट है राष्ट्रीयता की कोई ऐसी चेतना नहीं है, पर भक्ति काव्य हमारे राष्ट्रीयता का एक प्रमुख अंत साक्षावश्य है। आलवारों के काव्य से लेकर मध्यकाल में समुचे भारतीय सृजनात्मक क्षमता को उत्प्रेरित करने वाली वृत्ति भक्ति ही रही है, और इस स्तर पर संतों, सूफियों, सगुण भक्ति कवियों का काव्य अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य जन के लिए शक्ति स्रोत रहा है। काव्य का ऐसा विराट विस्तृत स्वरूप अन्यत्र आसानी से देखने में नहीं आता। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि अद्वैत और भक्ति का ऐसा समन्वय अन्य परंपराओं में संभव नहीं हुआ। यह भक्ति काव्य का वैशिष्ट है, जहां निर्गुण कहे जाने वाले कबीर एक के बाद एक सगुण संदर्भों को उठाते हैं। सगुणोपासक सूर निर्गुण की महिमा बखानते हैं, तांते सूर सगुण पद गावें। सेमेटिक सभ्यताओं के अंतर्गत कल्पना प्रधान रचना रूपों में सगुण लीला का चित्रण त्याज्य है। प्रसिद्ध शायर और विचारक अली सरदार जाफरी कबीर बानी की भूमिका में लिखते हैं, ये नोटेड कामा, मुसलमान सूफी रसूल इस्लाम का नाम लेने में बहुत सतर्क हैं। उनका उसूल है कि बाखुदा दीवाना बाश ओ बा मोहम्मद होशियार। खुदा के साथ तो दीवानापन कर सकते हो, लेकिन रसूल का नाम लेते वक्त सावधान रहना चाहिए। यूनाइटेड कहाँ बंद राजकमल संस्करण पृष्ठ संख्या 28। ईसा मसीह के कल्पना प्रधान चित्रण प्राय अनिवार्य रूप से विवादग्रस्त रहे हैं। यूँ सेमेटिक परंपराएं अपने ईश्वर और उनके प्रतिनिधियों के चरित्र चित्रण की पवित्र भावभूमि के प्रति बराबर सतर्क सावधान रही हैं। स्वयं हिंदी भक्ति काव्य में राम के चरित्र को लेकर कल्पनाशीलता कहीं वैसे उत्साहित नहीं दिखती जैसे कृष्ण के चरित्र को लेकर देखती है। तब यह कारण नहीं कि मुसलमान हरिजनन ने जब भक्ति काव्य लिखा तो प्रायः कृष्ण के चरित्र को केंद्र में रखकर कृष्ण की तुलना में राम के चरित्र की तितिक्षा का हल्का व्यंग्य करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, नोटेड कामा, इस पौराणिक धर्म के युग में विवेकवाद का सबसे बड़ा प्रतीक रामचंद्र के रूप में अवतरित हुआ, जो केवल अपनी मर्यादा में और दुख सहिष्णुता में महान रहे, किंतु पौराणिक युग का सबसे बड़ा प्रयत्न श्री कृष्ण के पूर्णावतार का निरूपण था। नोटेड कामा, रहस्यवाद। इस प्रसंग में रोचक तथ्य यह है कि राम कथा का विस्तार देश में और उसके बाहर दूर पूर्व तक कृष्ण कथा की तुलना में कुछ अधिक ही हुआ है। हमारे देश में कहा जाता है कि अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने पर भी भारतीय साहित्य एक है। यह उक्ति जहाँ सर्वाधिक चरितार्थ होती है वहाँ प्रसार है भक्ति काव्य का। तब भक्ति काव्य का अध्येता भी भारतीय चेतना में सर्वाधिक तादात में यही अनुभव करता कराता है। अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक परंपरा के कारण इस समूची प्रक्रिया में हिंदी भक्ति काव्य की विशिष्ट भूमिका रही है। जहाँ हिंदू मुसलमान ब्राह्मण दलित पुरुष स्त्री के भेदभाव एक बार के विलीन हो गए हैं, यह स्पष्ट ही काव्य की श्रेष्ठतम भावभूमि है। काव्य संगीत सामान्यतः और भक्ति काव्य विशेषतः वह विशाल सुरसरी धारा है जिसमें पाठक श्रोता अपने क्षुद्र मनोविकारों को विलीन करता इस प्रक्रिया में स्वतः स्वस्थ शांत अनुभव करता है। यूँ यह प्रवाह सभ्यता के आरंभ से बिना स्वयं प्रदूषित हुए अवगाहन करने वालों को निर्मल बनाता है। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण के युग में इसकी नितांत व्यवहारिक उपयोगिता स्वतः स्पष्ट है। उच्चतर लक्ष्यों की बात अभी न भी की जाए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी इलाहाबाद 8 अगस्त 2002।